नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। हिंद महासागर में अमरीकी पनडुब्बी के हमले में ईरानी युद्धपोत के डूबने के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष गहराया। 78 नाविक बचाए गए, 101 नाविक अब भी लापता। विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया संकट के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से मुलाकात करेंगे। पूरे देश में होली हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और कोलकाता में T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 170 रन का लक्ष्य दिया। हिंद महासागर में अमरीकी पनडुब्बी के हमले में ईरानी युद्धपोत के डूबने के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष गहरा गया है। 78 नाविकों को बचा लिया गया है, जबकि 101 नाविक अब भी लापता हैं। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेडगेज ने कहा है कि ईरान की युद्धपोत पर यह हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहला हमला है। इससे पहले श्रीलंका के अधिकारियों ने कहा था कि युद्धपोत के चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया है और कई शव बरामद किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि घायलों को इलाज के लिए समुद्र तट पर लाया गया है।
यह घटना गोल से लगभग 40 समुद्री मील दक्षिण उस समय हुई जब जहाज भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के बाद ईरान लौट रहा था। श्रीलंकाई अधिकारियों ने बचाव कार्यों के लिए जहाज और विमान तैनात किए। श्रीलंकाई नेवी ने कहा कि उन्होंने 32 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया है और समुद्र से कई शव बरामद किए गए हैं। कम से कम 75 नाविकों के घायल होने की सूचना है, जबकि 100 से भी अधिक लोग अभी भी लापता हैं। हिंद महासागर में खोज और बचाव अभियान जारी है। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि ईरान के मिनाब के गर्ल्स स्कूल पर घातक हमले की जांच की जा रही है। ईरान के अधिकारियों ने दावा किया है कि इस हमले में कई बच्चों सहित 153 लोग मारे गए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में प्रशासन से जुड़े बासिज और आंतरिक सुरक्षा कमान केंद्रों पर इसराइल के हमलों से पश्चिम एशिया में जारी संकट और गहरा गया है। इजरायली रक्षा बल IDF ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान देश भर में नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन कमान केंद्रों का इस्तेमाल करता है। IDF ने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों और अन्य प्रणालियों को भी निशाना बनाया। अमरीका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता एजेंसी के अनुसार 28 फरवरी से ईरान में 1097 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। एक रिपोर्ट।
इसराइल की वायुसेना ने बेरूत में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स ने आज चेतावनी दी कि जिसे ईरान का अगला सर्वोच्च नेता चुना जाएगा उसको खत्म करने पर भी विचार होगा। इससे पहले कल इसराइल की सेना ने विशेषज्ञों की सभा के एक भवन पर हमला किया। ये सभा धार्मिक नेताओं का समूह है जो ईरान के सर्वोच्च नेता का चयन करती है। अमरीकी युद्ध विभाग के बयान में कहा गया है कि कुवैत के शुएबा बंदरगाह पर ड्रोन प्रणाली के हमले में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल अमरीकी सेना के 4 रिजर्व सैनिक मारे गए हैं। इस बीच साइप्रस पर हमले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस साइप्रस में युद्धपोत और वायु रक्षा उपकरण तैनात कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नाकामी है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने ईरान पर हमला करने से पहले अपने साथियों से सलाह नहीं किया। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में मौजूद हालात के बीच अधिक मांग को देखते हुए टोरंटो, फ्रैंकफर्ट और पेरिस के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने बताया कि कल से 11 मार्च तक दिल्ली और टोरंटो के बीच 3 अतिरिक्त उड़ानें संचालित होंगी। 7 मार्च से 10 मार्च तक दिल्ली और फ्रैंकफर्ट के बीच 3 उड़ानें तथा दिल्ली और पेरिस के बीच 1 अतिरिक्त उड़ान चलेगी। इस बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा से दिल्ली, कोच्चि और मुंबई के लिए विशेष उड़ानें शनिवार तक चलाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यह भी कहा है कि मस्कत और दिल्ली के बीच तथा मस्कत और मुंबई के बीच अतिरिक्त उड़ानें भी संचालित होंगी। इस बीच विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक टेलीफोन के जरिए इस नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर 1800118797, अन्य नंबर हैं 011-2301-2113, 011 2301-4104 तथा 011-2301-7905। ब्रिटेन ने चार देशों के अध्ययन वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कानूनी रूप से देश में प्रवेश करने वालों के शरण आवेदनों में अचानक वृद्धि को रोकने के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। अफगानिस्तान, कैमरून, म्यांमार और सूडान के विद्यार्थियों के लिए ये प्रतिबंध लागू किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
देश के गांव और शहरों में कानूनी चाहिए सलाह, वकील जी फोन पे बताएंगे कानूनी राह।
निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज सवेरे नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। श्री स्टब रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता भी होंगे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब कल विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री फिनलैंड के राष्ट्रपति के सम्मान में दोपहर का भोजन का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति स्टब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भी राष्ट्रपति स्टब से मुलाकात करेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति का मुंबई का दौरा करने का भी कार्यक्रम है, जहां वे महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। वे भारतीय व्यापार जगत के नेताओं से बातचीत करेंगे और भारत फिनलैंड व्यापार सम्मेलन में भाग लेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति मुंबई विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित भी करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भूटान के विदेश और व्यापार मंत्री दीनानाथ धुंगेल और माल्टा के उप प्रधानमंत्री इयान बर्ग आज नई दिल्ली पहुंचे। वे 11वें रायसीना डायलॉग में भाग लेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और भूटान के बीच साझेदारी प्रगाढ़ आपसी भरोसे और सद्भावना पर आधारित है। होली पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में मनाई जा रही है। सिखों का पारंपरिक त्यौहार होला मोहल्ला भी आज श्री आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब में मनाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु तख्त पर पहुंचे और उत्सव में हिस्सा लिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
श्री आनंदपुर साहिब की पावन धरती खालसाई रंग में रंगी हुई है और चारों तरफ हर्षोल्लास है। होला मोहल्ला के आज आखिरी दिन श्री आनंदपुर साहिब स्थित तख्त श्री केसगढ़ साहिब में एक मोहल्ला के रूप में नगर कीर्तन सजाया गया। अलग अलग निहंग सिंह संगठनों ने हाथी घोड़ों पर सवार होकर इसमें हिस्सा लिया और एक दूसरे पर फूल और गुलाल बरसाया। इस बीच गुरु नगरी अमृतसर में भी विशेष रौनक देखने को मिली। आज दोपहर श्री अकाल तख्त साहिब से पंच प्यारों की अगुवाई में पारंपरिक नगर कीर्तन सजाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
अहमदाबाद से हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में भी पूरे उत्साह और उल्लास के साथ होली मनाई गई।
पूरे गुजरात में आज रंगों का पर्व धुलेटी हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। राज्य भर में सुबह से ही अबीर गुलाल की बौछारों के बीच लोग एक दूसरे को रंग लगाकर रंगोत्सव की खुशियां बांटते नजर आए। पोरबंदर के सांदीपनी हरिमंदिर में आयोजित फूल डॉल महोत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जहां होली के रसिया के गायन ने पूरे मंदिर को ब्रज के रंगों में सराबोर कर दिया। वही डांग के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में परंपरा का निर्वाह करते हुए स्थानीय लोगों ने फाग मांगने की अपनी प्राचीन परंपरा को भी जीवंत रखा। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
देहरादून से हमारी संवाददाता ने बताया है कि रंगों का पर्व उत्तराखंड में पूरी धूमधाम और मेलजोल के साथ मनाया गया।
उत्तराखंड में आज होली का पर्व पूरे हर्षोल्लास, पारंपरिक रीति रिवाजों और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। राजधानी देहरादून सहित हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और अन्य जिलों में सामूहिक होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हुए। देहरादून स्थित लोकभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत में पारंपरिक कुमाऊनी होली की धूम रही, जहां ढोल डमरू की थाप पर लोग झूमते नजर आए। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
कोहिमा से हमारी संवाददाता ने बताया है कि नागालैंड में रंगों का त्योहार पूरे जोश और एकता के साथ मनाया गया।
इस साल नागालैंड में होली का जश्न इको फ्रेंडली तरीका से मनाया गया। दिमापुर में यूनिटी क्लब और रंगासा ने मिलकर बड़े पैमाने पर होली का जश्न मनाया, जो बहुत सफल रहा, जिसमें करीब 3,000 से ज्यादा लोग आए। लोगों ने लड्डू मार होली और फूलों की होली में हिस्सा लिया, जिसमें सिंथेटिक चीजों के जगह खाने वाले लड्डू और फूलों के पंखुड़ियों ने त्योहार को एक अनोखा और भक्ति वाला ताज दिया। आकाशवाणी समाचार, असुन्यो कोहिमा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बेलगावी जिले के श्री वीर भद्रेश्वर मंदिर में राजगोपुरम कलशारोहण और महाकुंभाभिषेकम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीट के लिए नामांकन पत्र भरने का काम कल समाप्त हो जाएगा। इनमें छत्तीसगढ़ की 2 सीट शामिल हैं। नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को होगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने आज राज्य विधानसभा में बताया कि पेट्रोल और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर का नया शुल्क लगाने के बाद सरकार ने 93 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है। मणिपुर में नवनियुक्त मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों का वितरण कर दिया गया है। 2 उप मुख्यमंत्री और 2 मंत्रियों को 2-2 विभागों का प्रभार दिया गया है। उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन को ग्रामीण विकास और पंचायती राज के साथ जनजातीय कार्य तथा पर्वतीय विभाग और उप मुख्यमंत्री लोसी दिखो को लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। केरल के सबरीमला मंदिर से स्वर्ण चोरी के मामले में आरोपी त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए पद्म कुमार को कुल्लम सतर्कता न्यायालय ने जमानत दे दी है। न्यायालय ने सबरीमला मामले में उनके नाम दर्ज दूसरे मामले में उनकी याचिका पर यह फैसला सुनाया। दूसरे मामले में भी जमानत मिलने के बाद अब उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का आज 176वां स्थापना दिवस है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में दक्षिणी क्षेत्र के प्रमुख अपर महानिदेशक वी मुगाल ने खनिज खोज और भूवैज्ञानिक अनुसंधान में संगठन की उपलब्धियों की सराहना की। सरकार ने पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 860 रुपए की अनुबंध शुल्क पर 7 लाख रुपए का ऋण देने का दावा करने वाले फर्जी स्वीकृति पत्र का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये फर्जी पत्र है। कार्यालय ने स्पष्ट किया कि पुनर्वित्त एजेंसी सीधे जनता या छोटे उद्यमियों को ऋण नहीं देती। कोलकाता में T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 170 रन का लक्ष्य दिया है। मार्को यानसन ने नाबाद 55 रन बनाए। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 10 रन बना लिए थे। दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच शाम 7 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। और बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में आज कांग खाई शिंग और अरुण ताई ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया। मलेशिया की इस जोड़ी ने आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी का सामना आज अलवी फरान से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिंद महासागर में अमरीकी पनडुब्बी के हमले में ईरानी युद्धपोत के डूबने के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष गहराया। 78 नाविक बचाए गए, 101 नाविक अब भी लापता। विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया संकट के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से मुलाकात करेंगे। पूरे देश में होली हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। और कोलकाता में T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 170 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।